जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन जारी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయే మౌదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నష్ట కిం మజ్ఞానతి నిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే.
ఆప్ సభీ కృష్ణ కథా ప్రేమీ వైష్ణవ కా राधा गिरधारी मंदिर में हार्दिक स्वागत है और हृदय से धन्यवाद है कि भगवान की मंगलमय लीला कथा सुनने के लिए आप पधारे हैं. मनुष्य जीवन का यही सर्वोत्तम लाभ है कि भगवान के और उनके प्यारे प्रेमी भक्तों के दिव्य चरित्रों को सुना जाए. अभी आप लोग कीर्तन कर रहे थे भगवान के नाम का और अब भगवान की कीर्ति यश का श्रवण करेंगे. उसी में महासुख है. जो सुख हो तो गोपाल ही गाए. एक गिरधारी गोपाल के गुण गाने में जो आनंद है, सुनने में जो सुख है, वो और कोई साधना में नहीं है. जो सुख होत न तप व्रत कीने कोटिन तीरथ नहाए. कोई भी व्रत कर लो आप, कोई भी जगह पर जाकर तप कर लो, हरे कृष्णा, और कोई भी तीर्थ पे चले जाओ, निश्चित कुछ ना कुछ पवित्रता प्राप्त होती है, कुछ सत्व गुण की वृद्धि होती है. लेकिन आनंद और सुख जो है वो उतना नहीं जितना गोपाल के गुण गाने और सुनने में. सूरदास जी का ये भाव है. भगवान के श्रवण और कीर्तन में जिसकी रति मति गति हो गई, ऐसे महात्मा वैष्णवों को चारों पदार्थ दे दिए जाए, धर्म पुरुषार्थ जिसको कहा जाता है, लेकिन उनको राज नहीं आता, उनको सुहाता नहीं. लेत लेत नहीं चारी पदारथ चरण कमल चित लाए. कृष्ण के नंदन नंदन के चरणों में जिनका चित लग गया, उनको चारों पदारथ से कोई मतलब नहीं.
तीनों लोक तीन सम त्यागे, तीनों लोक की संपत्ति को एक तिनके की तरह त्याग देता है. नंद नंदन उर लाए, इसके उर में हृदय में
नंद नंदन बस गया है, उनको तीनों पदार्थ से कोई मतलब नहीं।
वंशी वट वृंदावन जमुना अजी वैकुंठ न जावे।
वंशी वट वृंदावन जमुना को त्याग कर वो वैकुंठ भी जाना नहीं चाहता, तो संसार के इस जड़ जगत की बात ही क्या है। सूतदास प्रभु हरि को सुमिरन, भगवान श्री हरि के स्मरण कीर्तन करते हुए करता है जो बहुरी भव जल न आवे, वो भव सागर में वापस नहीं गिरता। ये बात सत्य है, यही भागवत का सार जो सरल ब्रज भाषा में कहा गया है। इसीलिए सबसे बड़ा पुण्य त्रिभुवन में कोई है तो है हरि कथा को सुनना। भगवान के प्रेम की प्राप्ति का सरल और श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत का श्रवण। इसलिए आज रविवार के इस प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सभी वैष्णव पधारे हैं, कोई निश्चित विषय नहीं था, लेकिन भगवान के गुण भागवत से गाना है। अभी जो श्लोक लिखा गया तो मैंने कहा कि सात नहीं साठ कर दो, तो प्रभु जी ने आकर कहा क्या श्लोक ठीक नहीं लिखा, मैं बोला श्लोक तो सब ठीक है, हम ठीक नहीं। श्लोक गलत नहीं लिखा, न श्लोक ठीक न ठीक नहीं था, ऐसा नहीं है, श्लोक तो सही है, बस गलती हम में है, ठीक हमें होना है। लेकिन फिर भी कुछ मैसेज होता है उस श्लोक के द्वारा, कुछ लीला कुछ संदेश जिससे हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति सेवा साधना में उत्साह बढ़े, उसके लिए कुछ आधार लिया जाता है किसी श्लोक का। भागवत प्रेम रस भक्ति ग्रंथ है, कोई भी श्लोक हो मधुराति मधुर है। फिर भी हमने 60 नंबर श्लोक को चुना जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर श्रीधाम वृंदावन के जो वासी है ब्रजवासी है उनका क्या स्वभाव होता है, उनका क्या व्यवहार होता है, उसकी जानकारी इस श्लोक में मिलती है। और इसी श्लोक का आस्वादन श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे पुरी से, कहते हैं चैतन्य चरितामृत, तो उसी बहाने कुछ भगवान की लीला गौर लीला कृष्ण लीला का स्मरण हो जाए, इसलिए इस श्लोक का हमने आश्रय लिया। किसी प्रेमी से हमने सुना था कि वैष्णव की बहुत प्रकार की सेवा होती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ सेवा वैष्णव की क्या है, है ना, अन्न दे देना, धन दे देना, प्रणाम कर देना, बहुत सारी सेवा हम वैष्णव की करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है वैष्णव की। तो उस भक्त ने उत्तर दिया कि भगवान की या उनके प्रेमी भक्त की कोई लीला सुना दो, यही उनकी सेवा। भगवत गीता का भागवत का कोई श्लोक सुना दो, यही उनकी सेवा है, क्योंकि यही उनका स्वभाव है और यही उनकी संपत्ति है। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे प्रेमी होते हैं मेरी कथा में ही रमते हैं, उन्हीं को सुनना चाहते हैं। और मन शुद्ध वैष्णव का मन प्रसन्न हो जाता है भागवत के किसी श्लोक को सुनकर, प्रहलाद या ध्रुव जैसे प्रेमी भक्त के किसी संदेश को सुनकर। यही वास्तव में वैष्णव की सेवा है कि उनको भगवान के या भगवान के भक्तों के विषय में सुनाया जाए, सबसे बड़ी सेवा है। और वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, जिसको तुष्ट करने पर पूरा जगत तुष्ट हो जाता है, लेकिन वे भगवान जब यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, लेकिन भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने पर भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते। हाँ, ये शुद्ध भक्ति की बात है, हम जैसे वेश वाले भगत तो केवल इससे प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ ऊपर से देना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध भक्त हरि कथा को सुनकर प्रसन्न हो जाते। आइए महाप्रभु श्री चैतन्य जिस श्लोक का रसास्वादन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी गंगा तट पर भगवान के श्री धाम वृंदावन और ब्रजवासियों का स्वभाव बताते हैं, उस श्लोक का हम भी आस्वादन करें। श्रील प्रभुपाद की परंपरा अनुसार सर्वप्रथम इनका उच्चारण सुने और तत्पश्चात इसका उच्चारण करें हमारे पीछे आप सभी वैष्णव। यत्र नैसर्ग दुर्वेराय सहासनने मृगादय मित्राणि वाजिता वास दृतर्षकादिभिः यत्र नैसर्ग दुर्वेराय सहासनने मृगादय मित्राणि वाजिता वास दृतरुटतर्षकादिभिः बोलिए कोई एक वैष्णव माता है एक धन्यवाद ओके यत्र जहां नैसर्ग प्रकृति द्वारा दुर्वेरा वैर होने पर सह आसन साथ साथ रहते हैं नी मनुष्य मृग आदय तथा पशु मित्राणि मित्रगण इव सदृश अजित श्री कृष्ण के आवास निवास स्थान द्वित चले गए रूट क्रोध तर्षकादिकम प्यास इत्यादि अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और उनके भक्त के द्वारा वन का अर्थ है अनुवाद वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है जहां न भूख है न क्रोध न प्यास यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। तात्पर्य वन का अर्थ है जंगल हम जंगल से डरकर वहां नहीं जाना चाहते किंतु वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के ही समान है क्योंकि वे वैर नहीं रखते। इस भौतिक जगत में भी जंगल में पशु एक साथ रहते हैं पर जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। वैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है लेकिन वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं क्योंकि वहां तो कृष्ण की तुष्टि ही सबका एकमात्र लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में भी वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से वैर नहीं रखते। साधुगण गौओं का पालन करते हैं और सिंहों को दूध पिलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ आओ थोड़ा सा दूध पिलो। इस तरह वृंदावन में वैर तथा ईर्ष्या का नामो निशान नहीं है। वृंदावन तथा सामान्य जगत में यही अंतर है। हम वन का नाम सुनकर डर जाते हैं किंतु वृंदावन में ऐसा भय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, चाहे वह गोस्वामी हो या सिंह हो या कोई हिंसक पशु, हर एक का एक ही कार्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। सिंह भी भक्त है, वृंदावन की यही विशेषता। वृंदावन में हर एक व्यक्ति सुखी है, वहां बछड़ा सुखी है, बिल्ली कुत्ता सभी मनुष्य सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण की सेवा करना चाहता है, मतलब वैर का तो नामो निशान ही नहीं रहता। कोई कभी कभी ये सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर वैर रखते हैं क्योंकि भोजन छीन लेते हैं, उत्पात मचाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं ये सेवा करते। वृंदावन ने कृष्ण ने यह स्वयं दिखला दिया कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार, यही वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं, आप मरे नहीं, यह तो भौतिक जीवन। वृंदावन के निवासी यह सोचते हैं कि कृष्ण ने जो कुछ दिया है वो हम सब प्रसाद के रूप में बांट कर खा। यही मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती, इसका विकास कृष्ण भावनामृत के साथ धीरे धीरे होगा। साधना के द्वारा इस पद पर पहुंचा जा सकता है। थोड़ा सा पढ़ा हूं, बहुत ही सुंदर और सार गर्भित तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। और हम सबका लक्ष्य वृंदावन है, बैक टू गॉड, भगवान के धाम जाना। लेकिन दुर्भाग्यवश माया के त्रिगुणों से वशीभूत होकर, काम क्रोध के हम दास होकर इस भौतिक जगत में अन्य अन्य शरीर में कर्म भोग रहे हैं। आत्मा की यही दुर्दशा है। लेकिन भगवान के दिव्य कथा और उनके प्रेमी भक्तों की सेवा करके, साधना करके हम उस गति, उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत प्रकार के धर्म है, लेकिन भागवत महात्म्य में आया है, श्री नारद मुख के वचन है, श्रवणम तु सर्व धर्मेभ्यो धर्म मन्ने तपोधना। कुमारगण कहते हैं कि जितने प्रकार के धर्म है, धर्म अर्थात मनुष्यों को करने लायक कर्तव्य, एक अर्थ उसमें जो भगवान के विषय में सुनना, ये सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ने। ब्रह्मा जी के पुत्र चार कुमार कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ धर्म सुनना। वैकुंठात स्थितो विष्णु, जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, श्रवणा अस्य लभ्यते, श्रवण सारी श्रोताओं को लभ्यते, प्राप्यते इति अर्थ प्राप्त हो जाते। वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु को किसी को प्राप्त करना हो तो प्रथम उपाय है श्रवणम, उसके विषय में सुनना। इसलिए जो इस्कान के मंदिर है वो केवल भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं है, भगवान के दर्शन सुनने के लिए है। केवल हम दर्शन करने ही नहीं आते, दर्शन सुनने आते। दर्शन मतलब फिलोसॉफी, विज्ञान, भगवत संबंधित ज्ञान। तो ये हम अभी सुन रहे हैं गिरधारी के विषय में, उनके साथ हमारे संबंध के विषय में, उनके स्वभाव ऐश्वर्य के विषय में, और इनको सुनकर ही हमारी शुद्धता होगी बुद्धि की, मन की, इसमें वासना या अन्य अन्य मद मत्सर्ज आदि दुर्गुण विराजमान हो चुके हैं। इसलिए भागवत के प्रारंभ में आया है श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण के। तो आप लोग जागेंगे, यही सबसे बड़ी मूल्य होगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। रूप गोस्वामी ने लोल्यम कहा है, वही लोल्य हो उसकी तो बुद्धि में जो विकार आ गया है, जो हमारे आत्मा को विकास को ब्रेक कर देता है, उसके लिए शुद्धिकरण की सरल प्रक्रिया यही है कि भागवत श्रवण सुनना। देखिए, हम तो भगवत लीला कथा कहने के उतने अधिकारी नहीं है जितने परंपरा में आने वाले गुरुजन है, श्रील प्रभुपाद के आश्रित भक्त या उनके पूर्ववर्ती आचार्य। हम तो उनसे जो सुना है उनको उसी रस को, उसी भक्ति ज्ञान को, उसकी टूटी फूटी वाणी, चमची रूपी वाणी से केवल परोसते हैं। इसको बनाने वाला कोई और है। होता है ना कि एक भक्त का जो प्रसाद बना लिया, सर्विस करने वाला दूसरा है, और सर्विस करने वाला भी अपने अपने अलग अलग मूड में होता है, उनके पास सर्विस का पात्र भी अलग अलग होता है। जैसे आम के जूस का पूरा तोप भरा हुआ है, लेकिन सर्विस करने वाला कंजूस हो और छोटा सा चमचा लेकर बैठा हो चटनी देने वाला, तो क्या होगा? है ना, सर्विस करने वाला उदार हो, उनके पास बड़ा सा पात्र हो, एक में पूरा गिलास भर जाए तो कुछ और रस बरसता है। तो वो जो है आचार्य प्रभुपाद गुरुजन, वो सब उदार है, करुणावान है, और उसके पास बड़ा बड़ा, और हम लोग कंजूस है और उसमें भी चमची छोटा छोटा बैठे है, वाणी उतना बुद्धि भी नहीं, उतना ज्ञान भी नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आचार्य है, वैष्णव है, जो स्वयं पहले उस रस का आस्वादन करते हैं भागवत का, कृष्ण लीला का। और ऐसे व्यक्ति जो परोसे तो उसमें और एक विशेषता हो जाती है। जैसे सनातन गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है हरि भक्ति विलास में, दर्वी पाकम रसम यथा, और दैन्यवश किसी भक्त के भाव को वो स्मरण करते हैं कि रस जो होता है वो परोसने वाले चमचे तो नहीं आता है ना, वो कितना ही उसमें टूटा रहे भर भर के दे, लेकिन वो चमचा जड़ होने के कारण वो रस का उस आम के क्या टेस्ट है वो चमचे को पता नहीं। ऐसी दशा हम लोग की। वास्तव में वैष्णव वक्ता तो वह है जिनकी वाणी में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक क्षण में रस बहता हो, रस नितरता। इसीलिए भागवत को रसिका कहा गया, रसिका भाव का। और इस रस की आप अगर थोड़ी भी चाह करते हो, इच्छा करते हो, तो हम लोगों को प्रत्येक को प्रयास पूर्वक एक दुर्गुण को हमारे हृदय से निकालना होगा, और वो है मत्सरता। निर्मत्सराणाम मत्सर मतलब, अरे महात्मा वह है जो मत्सर से मुक्त हो। आप कहोगे मच्छर की बात कर रहे हो क्या, मीरावड़ में बहुत मच्छर है, मच्छर से तो कोई मीरावड़ का महात्मा मुक्त नहीं है। चलो भाई, वो मच्छर को आप नेट डाल के या क्या क्या आता है वो ऑल आउट, इंडिया ऑल आउट तो कुछ भी आप कुछ उपाय कर सकते हो, लेकिन एक मच्छर जो अंदर घुस गया है, मत्सर, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, इसका हम सरल हिंदी करें तो अन्य के गुणों को देखकर हृदय में जो उर में, हृदय उर मतलब छाती, उर में जो आग दहकती है, अन्य के गुणों को देखकर, अन्य के सुखों को देखकर, अन्य के क्वालिटी को देखकर हमारे उर में आग दहकती है, उसको हम क्या कहते हैं, मत्सरता, ईर्ष्या। लेकिन उनको पता नहीं कि ये मत्सरता, ये ईर्ष्यालुता, ये असूया स्वयं की प्रगति के मूल में रखी हुई आग है। आप समझ रहे हो, किसी के सुख गुण को देखकर हमारे हृदय में ईर्ष्या होती है तो उससे पतन उनका नहीं होगा, किसका होगा, स्वयं का। अगर हम में ये मत्सरता है तो हम हमारी ही प्रगति के मूल में आग लगा के बैठे हैं, होगी ही नहीं। लेकिन गुणों के गिरिवर के तलेटी में पड़े हुए अणु अवगुण का भी जो अवलोकन करती है जिनकी आंखें, जिसने ईर्ष्या का अंजन लगा दिया है उनको गुण का गिरिराज भी नहीं दिखता। आप समझ रहे हो, किसी भक्त में बहुत सारे गुण होते हैं, गुणों का वो पर्वत है, लेकिन उसकी उसकी क्वालिटी में मान लो छोटा सा एक दुर्गुण पड़ा हो, अणु अवगुण पड़ा हो, अणु छोटा अवगुण, गुणों का तो गिरिवार है लेकिन एक अणु अवगुण पड़ा है, लेकिन ईर्ष्या का जिसने अंजन लगाया है उनकी आंखें वो गिरिवर को नहीं देखती, उस तुच्छ अवगुण को ही देखती है। ऐसी पता नहीं आदत हो गई है कि स्वभाव हो गया है रामजन। और सजातीय क्षेत्र में ये मत्सरता वृद्धि करती है। सजातीय क्षेत्र समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा कीर्तन करता हो तो दूसरा कीर्तन करने वाले के प्रति उनकी ईर्ष्या है, क्योंकि उनका सेम बिजनेस है। कोई कथा करता है तो सजातीय अपने दूसरा मरे जी उसमें ईर्ष्या नहीं होती, आप अपने सजातीय क्षेत्र में पर आगे बढ़ रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं वही ये कर रहा है, अरे ये कैसे हो गया। आप समझ रहे ना, ईर्ष्या दूसरे और अच्छा काम कर रहे उससे हमको ईर्ष्या नहीं होती। नजदीक का हो, संबंधी हो, अपना हो, जैसे उसमें उस सजातीय क्षेत्र माना जाता है उसमें क्या होता है, ईर्ष्या धड़कती है। लेकिन अगर ये दुर्गुण है तो आप इस रस से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि भागवत के प्रारंभ में यही योग्यता दी गई। और शायद भगवत गीता में भी द्वारकाधीश ने अर्जुन को 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यही निवेदन किया, परम दिव्य रहस्यमय ज्ञान अर्जुन में तुमको दे रहा हूं, प्रवक्ष्यामि पुनः, फिर से दे रहा हूं, क्यों, अनसूयवे, क्योंकि तू ईर्ष्या से मुक्त है, तेरे में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए तू इस ज्ञान को पचा पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए हम यह निवेदन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के भक्तों को अगर इस भक्ति लीला रस प्रेम में प्रवेश पाना है तो प्रयास पूर्वक इस दुर्गुण को हटाना है। और उसको हटाने का साधन क्या है, चाहते भी है क्या किया जाए, तो इसी के लिए जो ऐसे दुर्गुणों से मुक्त है, भगवान की लीला में ही जिसका चित्त वृत्ति भगवान के मंगलमय श्री नाम में ही जिसकी वाणी लगी हुई है, ऐसे भक्तों का संग सेवा करना पड़ेगा। पूर्ववर्ती हुए ऐसे वैष्णव आचार्यों के चरित्रों को सुनना पड़ेगा और उन वैष्णवों की उन आचार्यों की कृपा से ही, उनकी की गई हुई शुद्ध सेवा से ही हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। सीधी बात है, क्योंकि साधना भी अगर हम समर्पण भाव से न करें तो वो भी अहंकार बना देती है। आप समझ रहे हो, हम कुछ कर रहे हैं, इतना जप कर दिया, इतना ये कर दिया, लेकिन हम गुरु आज्ञा में समर्पित भाव से नहीं है तो भी एक मत बढ़ाता है, हमने किया, करता अहम, ये भी एक फसावट हो जाएगी। इसीलिए हमेशा गौरांग चैतन्य ने जो ये मत दिया ना, दास दासानु दास, ये इसी में सारा सार आ गया। अगर आप उसी मूड में हो कि हम तो वैष्णव के दासों के दासों के दास है और जो कुछ सेवा साधना करते हैं वो हमारे वैष्णव आचार्यों गुरुजनों की कृपा है, श्री गिरधारी जगन्नाथ जी का अनुग्रह है कि दास को इस लायक बनाया या इस सेवा का अवसर दिया और बार बार देते रहे, इस तरह के मूड में आप करते हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर भी समस्या बनी रहे। इसलिए हम इस श्लोक को, ये श्लोक हमको व्यक्तिगत रूप में बहुत ही मनन चिंतन और सुख देता है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप वैष्णव भी इन श्लोक के अर्थ भाव को समझकर प्रसन्न होंगे। और दुर्वैरा जो शब्द है, क्योंकि ईर्ष्या या द्वेष तभी होगा जब हम वैर करेंगे, और वैष्णव वैर से मुक्त होता है, वैष्णव तो प्रेमी होता है, वैर से उनको कोई मतलब नहीं। यहां तक वैष्णव के चरित्र हमारे सामने है कि अपने से वैर करने वालों के भी साथ वो वैर नहीं करता। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन उनसे कितना वैर किया, लेकिन भगवान उनको, युधिष्ठिर महाराज उनको अपना भाई समझ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भागवत के तात्पर्य में, भगवत गीता में भी लिखते हैं अहिंसा शांति आर्य एवं 13वें अध्याय में जो दिखाया गया उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, और भगवत गीता 12वें अध्याय में अदृष्टा सर्वभूतानाम उसके तात्पर्य में भी भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा है कि भक्त अपने शत्रु का भी शत्रु नहीं होता। शत्रु भी सामने आ जाए तो उनको इतना सम्मान इतना आदर प्रणाम करता है कि वो भी लज्जा से डूब जाते हैं मर जाता है। हरिदास ठाकुर को मारने वाले उन जल्लादों के प्रति की हरिदास ठाकुर की क्या भावना रही, प्रहलाद के वैर करने वाले संत महर्षि उनके गुरुजनों के प्रति प्रहलाद की क्या भावना रही। हम वैष्णव भागवत के चरित्र से यही यही सुनते समझते हैं ना। फिर जब वैरी के भी हम वैरी नहीं है तो वैष्णव के कहां वैरी होंगे कितनी ऊंची बात है। अगर हम हमारी वाणी से भी किसी वैष्णव को कष्ट देते हैं तो हम गाते तो यही है कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद के वचन भागवत में दुर्गाशा के प्रति है कि साधवो भयम भयम, और जिन वैष्णव की महिमा बता दी गई है कि वो साक्षात तीर्थ है। तीर्थ क्या है? तीर्थन कुर्वंती है। और ऐसे वैष्णवों को अगर हम कष्ट देते हैं दुख देते हैं तो सीधा भगवान पर आघात करते हैं, उनके हृदय में तो वही विराजमान है। तो अगर हम उन वैष्णवों को आदर देना सीख जाए, उनसे प्रेम करना सीख जाए तो समझिए कृष्ण आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है अपने प्रेमी भक्त के पीछे भागना। अनुव्रजामिते नित्यम प्रेत अंग्री रेणु भी, भागवत एकादश स्कंध 14वां अध्याय। भगवान ने कहा मैं अपने प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे ही चलता हूं। इसीलिए यह बड़ा महिमा मंडित श्लोक है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा जब बछड़ों की चोरी की दी गई और सुखदेव गोस्वामी उन लीला मंगलमय लीला को कहते हैं, और फिर इन लीला का बहुत सुंदर वर्णन है, और इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, 10वें स्कंध का 13वां अध्याय है। लेकिन इस लीला की समाप्ति के बाद देखा श्री ब्रह्मा जी ने, और इसी बात को सुखदेव जी ने गंगा तट पर सभा में रख दिया, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा, देखो राजा परीक्षित, श्रीधाम वृंदावन के जो वासी है ब्रजवासी है, अभी ब्रजवासी मतलब केवल मनुष्य नहीं, ब्रज में जो वास करे चाहे वो पशु हो पक्षी हो पेड़ हो कोई भी हो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में जड़ तो कुछ भी नहीं है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वहां के वृक्ष भी तो ऋषि मुनि है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वहां तो पत्ते पत्ते व राधे राधे बोलते हैं भाई, हमने तो लिखा हुआ देखा है, बोलते हुए तो हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं, लेकिन सब जगह ये भाव है वृंदावन ना वृक्षो बोले, ये सब जगह ये बात बताया कि चिन्मय धाम वहां जड़ है ही नहीं, जड़ तो हमारी बुद्धि और शरीर है, इस शरीर को सजाने धजाने में इतने व्यस्त है भगवान और भगवान के धाम के विषय में सुनने समझने की समय ही नहीं दिया। हम कभी कभी मैं रेलवे स्टेशन पर जाता आता हूँ देखता रहता हूँ, तो वहां पर कुछ भंगी लोगों को मैं देखता हूँ, उसके पास एक गंदा सा सीमेंट का थैला रहता है, सीमेंट निकाला हुआ होता है ना बोरी, और उसमें वो प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं, बेचते होंगे क्या कर देंगे जो भी करते, देखे है ना आप लोग अलग अलग सब कचरा उसी में घूमते रहते हैं। तो मैं विचार करता हूँ कि ये भी एक थैला है चमड़े का और हम भी उसमें सब कचरा ही डालते रहते हैं, इधर से इधर इधर से उधर से, और इसका मुंह बंद करके क्या एक तो अंदर सब कचरा ही है और ऊपर से भी हम प्रसाद तो कभी कभी डालते हैं, बाकी कचरा ही डाल रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे नहीं माने जाएंगे अगर भजन नहीं करते हैं, गलती उससे भी बुरे माने जाएंगे, क्योंकि वो तो उसका तो कुछ भी मिलेगा, इसका तो राख हो जाएगा, पूरे 80 किलो शरीर का जला दिए जाने पर एक किलो राख बन जाएगी, एक किलो भी नहीं बनेगी, लकड़ी का राख निकाल दिया जाए तो शरीर की राख तो एक किलो भी नहीं होगी, लेकिन हम इसको न समझते हुए देहाध्यास में देहाभिमान में देहात्म बुद्धि में हम आत्म तत्व पर विचार न करते हुए और आत्मा की जो असली हितेशी है भगवान भगवान की लीला का चिंतन न करते हुए हम अपने आप को ठग रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है और हरि भजन नहीं करता है, हरिहरी लीला नहीं सुनता, भगवान नाम संकीर्तन नहीं करता, तो अपने आप के साथ चीटिंग कर रहा है, अपने को ठग रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन मर जाएगा और मरने के बाद पराभवस्तावत बोध जाता तो यावत में जिज्ञासात्मतत्व ऋषभदेव भगवान ने कहा, अंत वो हारेगा, फिर पुनरपि जननम, फिर कहीं जन्म लेगा। इसीलिए भगवत गीता की स्तुति में आया, अम्बा तुम भगवत गीते, हे भगवत गीता तुम असली माँ हो, भवद्वेषिणी इस भवसागर से पार करने वाली है। ऐसे स्तुतियों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी गई है। जैसे भागवत को कई लोग पिता भी कहते हैं, कृष्ण पिता है या भागवत पिता है, भगवत गीता माता, यही माता पिता हम उतार देंगे जो इनकी शरण में आएगा। इसलिए भगवत गीता के श्लोकों को रटना है, भागवत के श्लोकों को सुनना समझना है, सुनना है और प्रार्थना करने की, हे माँ अब दूसरी माँ के गर्भ में न जाना पड़े। यद गत्वा निवर्तन्ते, जो भगवत शरणारविंद में जाता है, शरण में जाने का यही अर्थ है, इनको सुनना समझना। व्रजवासी मतलब जिसने वृंदावन में और भगवान के चरणों में समर्पण किया है, वास किया है, और सब चिन्मय है, दिव्य है, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करना यही उनका धर्म, यही उनका स्वभाव बन चुका है। और इसीलिए नैसर्गम प्राकृतिक नेचुरल, किसी को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं। इसीलिए हम वो जो श्लोक बोलते हैं अभिधेय प्रयोजन अभिधेय प्रणाम में, दिव्यम वृंदा अरण्यम कल्पद्रुमाद्यम, दिव्यम दिव्यम प्रकृति के तीनों गुणों से पार, और फिर क्या है वृंदा अरण्यम, वृंदा का वन है, वृंदा राधारानी का भी एक नाम है और उनकी वृंदावनेश्वरी है, और वृंदा एक भगवान की प्रिया जी तुलसी जी का भी नाम, उनका भी वन है। लेकिन वहां पर वृंदावन नहीं कहा गया, वृंदा अरण्यम, और संस्कृत में रण्य शब्द का अर्थ होता है झगड़ा, कलह, रण्य रण मैदान, आप सुने है ना, और जहां झगड़ा न हो कलह न हो उसे कहते हैं अरण्य। वृंदा का कैसा वन है जिसमें झगड़ा कलह देश ईर्षा वैर है ही नहीं, दिव्यम वृंदारण्य कल्पद्रुमाद्य, वहां के प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। अरे ठाकुर भी उसी वृक्ष के नीचे बंसी बजाता है, सारी लीला गोपियों की गोपों के साथ भगवान की वहीं होती है, तो सामान्य वृक्ष थोड़ी है, वहां की रज भी सामान्य नहीं, सब दिव्यादिव्य। तो नैसर्ग दुर्वैरा, वृंदावन में नैसर्गिक वास्तव में नेचुरली एक दूसरे के प्रति किसी को वैर नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। यह कथा सुनने से हमें क्या सीख मिलती है, हम वैष्णव को यह मैसेज मिलता है कि अगर हम वृंदावन जाना चाह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन वैर भाव से द्वेष भाव से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हमें वैर करने की वृत्ति रह गई तो वृंदावन की बाहर की परिक्रमा भी की एंट्री नहीं मिलेगी, गेट से आउट, क्योंकि वहां तो वही प्रवेश करेगा क्योंकि वो तो प्रेम राज्य है। अगर हमें वैष्णव किसी के की प्रति, कोई लोग कभी कभी आचरण करते अरे वो इतना पाप करता है इतना व्यसन करता है फिर भी वैर नहीं कर सकते, हमारे वैष्णव ग्रंथ तो यह बताते हैं कि जो पाप करता है गलत करता है उनके प्रति हम दया रखते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है उनके प्रति हम प्रणाम आदर रखते हैं, जो समान है उनके साथ हमारा मैत्रता होता है, वैर तो किसी से भी दिखाई नहीं गया। और एकदम जो नीचे तो उनकी हम उपेक्षा करते हैं, मतलब उनका संग नहीं करते, लेकिन उनका द्वेष वैर की तो बात ही नहीं लिखी गई, समझ रहे हैं ना। प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा सकरोति मध्यमा, वैर करने का तो कहीं लिखा नहीं गया, ईर्ष्या करने का कहीं लिखा नहीं गया। इसी बात को हमें समझना है कि अगर हम प्रेम राज्य वृंदावन भगवत प्रीति चाहते हैं, प्रीति भगवत प्रीति प्रेम पथ पर हम चरण पादार्पण करना चाहते हैं तो हमें इन वैर वृत्ति से वैर भाव से द्वेष भाव से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो प्रवेश प्राप्त होगा नहीं। अब मनुष्य की क्या कहे। देखिए मनुष्य मनुष्य में प्रेम होता है, पशु पक्षी में भी प्रेम होता है, पशु पशु में, पशु पक्षी में, पक्षी पक्षी में होता है, और यहाँ पे हम ऐसा भी देखते हैं कि मनुष्य को भी पशु में प्रेम होता है, लिखा गया है ना। अरे ये सब तो चरने वाले जीव है, चार अचर सृष्टि की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है वृक्षों में भी प्रेम होता है। प्रकृति का ऐसा प्रभाव पड़ता है वृक्ष भी पिघलता है, हमने देखा है ऐसे वृक्षों को, आपने भी छूने पर वो वृक्ष पूरा नष्ट हो जाता है। और कोई हमारे वृंदावन के विषय में रूप गोस्वामी जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की लीला लिखते थे, उस वृक्ष में पत्ते फूल फल उग जाते थे, मिलन की लीला लिखते थे, और जहां पर विरह की लीला लिखते थे राधा कृष्ण के विरह वेदना की, तो फूल फलों से लदा हुआ वृक्ष हरा भरा पतझड़ के समान सूख जाता था। उनका प्रभाव वृक्ष पर भी होता था प्रेम का, क्योंकि सही बात है वृक्षों पर भी होता है, अरे प्रकृति पर भी होता है। आप देखिए 16 क्या करोड़ों किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से, लेकिन जब वो 16 कला से खिलता है पूर्णिमा के दिन, तो समुद्र में बाढ़ आ जाती है। क्या समुद्र को कोई फोन करता है चंद्र देखिए आज पूर्णिमा में मैं उगने वाला है तू थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा कोई फोन करता है क्या? लेकिन उन दोनों का कनेक्शन है, प्रकृति पर भी प्रभाव है प्रेम का, है ना भाई। मयूर का उदय, मयूर नाचने लगते मोर जब वो मेघ को देखते, स्वाभाविक उनका आकर्षण है उनके प्रति। सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, अस्त होने पर बंद हो जाते हैं। क्या कमल और सूर्य कितने किलोमीटर दूर है, क्या मेल है उनका? तो मेल है, प्रकृति में भी ये प्रभाव है, और ठीक उल्टा प्रकृति में वैर का भी उतना प्रभाव है। सूर्य की तप्त किरणों पर फूलों पक्षियों का गहरत उल्टा असर भी होता है, सीधा सीधी सीधी बातें हैं ये सारी शास्त्र की। इसीलिए एक बात को आप समझिए कि श्री धाम वृंदावन में नहीं मनुष्य हो चाहे मृग हो प्रेम था एक दूसरे के प्रति सह आसन। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। वहां पर भावाग भालू चीता हरण ससक सांप सब एक साथ रहते थे। सह आसन शब्द का समझते हैं, एक साथ बैठते थे, विहार सैयासन भोजनेश साथ रहते थे, बैठते थे, खेलते थे, सब करते थे। क्यों? क्योंकि दुर्वैरा वैर नहीं था। किसमें वैर नहीं था? मनुष्यों में भी नहीं था, पशु पक्षी में भी किसी के प्रति कोई वैर नैसर्गिक की बात आ रहा, प्रेम मधुर भक्ति रस से भरा हुआ बात आ रहा। अरे संसार में तो बस भाई भाई में वैर, सास बहु में प्रेम, आप समझ गए, देरानी जेठानी में महाप्रेम, सब में प्रेम ही, कहा किसी को वैर दिखता ही नहीं, है ना, सब प्रेम प्रेम है। हमें क्या सीखना है भागवत से, समझ सकते हैं, सब में भगवान है, सबको प्रणाम करना है, सब किसी को सुखी देखकर आपके हृदय में आनंद आता है तो आप तीर्थ हो, आपको प्रणाम करना चाहिए। आप कोई ऐसा भक्त है जो अपनी वाणी से अपने व्यवहार से सबको सुख देता है और किसी को सुखी देखकर जिनका हृदय नाचने लगता है वो महातीर्थ है, लेकिन इस कलयुग में मिलना मुश्किल है। इस तरह का हम भक्तों, हम हमारे वैष्णवों में, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में यही देखा है और हमें यही बनना है, यही समझना है, यही संदेश है इस वातावरण को सुनकर। अब आप देखिए ये श्लोक का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। जारीखंड के जंगल में जब वृंदावन के रास्ते में वो प्रवेश किए तो उनके साथ भट्टाचार्य एक ही बात थे, तो नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया था कि हे महाप्रभु आप एक भक्त ले जाइए, कम से कम आपका कमंडल उठा लेगा, कुछ भोजन की व्यवस्था कर देगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखिए आप जब भक्ति में महाभाव में कीर्तन के रस में बह जाते हो तो आपके शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती, कहां मूर्छित हो जाते हो, कहां गिर जाते हो, और आप इस घनघोर जंगल के पथ में जाना है पर्वत के रास्ते से, इसलिए एक निवेदन हमारा सुन लीजिए कि एक को ले जाइए। और ये जो भगत हम आपके साथ भेज रहे हैं वो आपके अनुकूल है। कभी कभी साथ में आने वाला सरदर्द होता है, एक ही काफी होता है यात्रा को बिगाड़ने में। तो महाप्रभु आप ये बल ये जो है वो आपके स्वभाव के अनुकूल है, वो आपको समझ गया कि क्या चाहिए आपको। सेवक भी को बुद्धिपूर्वक रखना चाहिए ना, नहीं तो तकलीफ हो जाती है बहुत तरह की। तो फिर नित्यानंद प्रभु के निवेदन पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक को साथ में रख लिया। अब चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है, निज कूट कार्य तुम्हारे प्रेम आस्वादन। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन राधा भाव में कृष्ण का विरह में महामंत्र का आस्वादन करना, कृष्ण विरह में रोना। अगर ये शिल प्रभुपाद और ये इस्कॉन इसलिए बनाया गया, चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट जो है ये, हाँ ये संकीर्तन मोमेंट क्या है, रोने की पाठशाला है। रोने का स्कूल है ये, सिखाया जाता है। लेकिन संसार के लोग संसारी व्यक्ति और विषयों के लिए रोते रहते हैं, यहाँ कृष्ण के लिए रोना। और इसको आप सीख लिए ना, क्रंदनम यदि जानासि किम दूरे करुणार्णव। क्रंदनम अगर आप रोना सीख लिए प्रेम भाव में तो करुणा सागर दूर नहीं है, नजदीक है। राधा रानी यही रोती रहती थी ना। चैतन्य चरितामृत में इतना आस्वादन गौरांग महाप्रभु ने बहुत दिया है, कविराज महानुभाव ने इसको बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। गंभीरा में महाप्रभु रोते रहते थे कृष्ण विरह भाव में। और इसका अगर आपको आदत ये आप सीख लिए ना तो ये दूर ईर्ष्या बिर्षा ऐसे ही दूर हो जाएगी। सही पथ पर न चलने पर सब कचरा साथ में आता है। टाइम ही कहाँ है भक्त को ईर्ष्या करने का, अपनी सेवा से गुरु आज्ञा में साधना करने से फ्री नहीं है वो कि किसी से वैर करे या ईर्ष्या करे। यही परिपाटी है। और राधा रानी इसी मूड में थी, कहती थी हे सखी भाग्यशाली है वह नारी जो रात में सो जाती है। अरे सो जाती है कैसे भाग्यशाली, बोले स्वप्न पश्यति कृष्णम, क्योंकि वो स्वप्न में कृष्ण को देखती है। क्योंकि सोएगी तभी तो स्वप्न आएगा ना। लेकिन मेरी तो इतनी विधाता ने दुर्दशा कर दी है, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से हाय रे निद्रा मेरी दुश्मन बन गई है कि वो भी चली गई। जीते जी सामने तो आंखों से नैनों के आगे श्याम सुंदर नहीं दिखते, लेकिन नींद भी नहीं आती। अगर नींद आती तो सपने में तो दिख जाते, लेकिन मेरी तो दुर्दशा दोनों ओर से गई। कृष्ण गए तो नींद भी गई, तो अभी बाहर भी कृष्ण नहीं दिखते, सपने में देखने का भी चांस गया। ये प्रेमियों की महादशा महाभाव दशा। श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धव बाहु करके गौर प्रेम रस में निमग्न महाप्रभु गौरांग, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
आसी आसे वृंदावने नाचे गौर राय, झूले झूले गोरा चांद हरि गुण। इस तरह महाभय मंत्र की मंत्र मुग्ध महिमा में श्री गौरांग पदार्पण पृथ्वी को पवित्र करते हुए बलभद्र भट्टाचार्य पीछे कमंडल उठाते हुए घोर झारखंड के जंगल में प्रवेश करते हैं, तो ये सेवक राज बलभद्र भट्टाचार्य डर रहे कहीं शेर ना आ जाए कहीं सांप ना निकल जाए। और ये महाप्रभु तो उसको मतलब नहीं, तो मस्त है। उसी समय देखा कि आर एक दिने पथे व्याघ्र करीला शयन, एक महाभयंकर विकराल टाइगर व्याघ्र बिल्कुल बीच रस्ते में सोया हुआ था। कुछ लोग सोते हुए ही अच्छे हैं, छोटे बच्चे कुत्ते शेर सब सोते हुए ही अच्छे हैं, उनको जगाना नहीं चाहिए। चोर चाणक्य ने लिखा है सात व्यक्तियों को सोने देना चाहिए। वो सोया उसको उसके आजूबाजू से गुजरना भी नहीं चाहिए, सोया रहे उसी में समाज का हित होता है, भला होता है। सोया हुआ था, चलो अच्छा था। तो भट्टाचार्य ने देख लिया, महामंत्र में महाप्रभु मस्त है, तो भट्टाचार्य देख रहे कि बाप रे, से वो तो देख ही रहे थे कहीं से आ न जाए, पर शेर सामने से आया। चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहे थे, सेवक पीछे है, किसको कैसे चलना चाहिए ये भी एक शैली है, आगे कौन चलता है, पीछे कौन चलता है, साइड में कौन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए छोटा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि मंद और बंद नहीं चालू। तो ये बातें समझ में आती है, कैसे क्या मुझे कहा मैं क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, रफ एंड टफ की बात नहीं चलेगी, सूक्ष्म विज्ञान है ये भक्ति। और ये कुछ बोले रोके रोके तब तक तो महाप्रभु ने क्या कर दिया, उसके दिव्य अति दिव्य श्री प्रेम चरण छू गया उससे, उस व्याघ्र के शरीर से चैतन्य महाप्रभु का चरण छू गया, स्वच्छ हो गया। और चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम मूर्ति है, और उसी तरह व्याघ्र में रोमांच कंपा तुरंत डायरेक्ट चालू हो गया कनेक्शन, जैसे बिजली को छूते ही, ऐसे ही प्रेम छूते ही चालू हो गया उसमें। प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कहिते व्याघ्र नाचिते लागिल। महाप्रभु ने कहा हे कृष्ण कृष्ण बोलो, तो व्याघ्र दोनों पंजा जंगल, आप सर्कस में देखे होंगे इस तरह का दृश्य, और अभी तो गंभीर ऐसा है कि आपको कॉलेजों में भी दिखने मिलता है, जहाँ रोड पर ही मिलता है ये सब। अभी पहले कुछ लोग मुझे कुछ लोग पूछते हैं ना कि अभी पहले बच्चे लोग जीत करते थे कि चलो जू दिखाने ले जाओ, प्राणी संग्रहालय, अभी क्यों नहीं करते, बोले अभी जरूरत नहीं, जहां भी देखते प्राणी दिखते उनको, वो पहले प्राणी संग्रहालय में प्राणियों को देखने जाना पड़ता था, अभी ट्रेन में बस में रोड में सब दिख जाते हैं, सब एक्शन रिप्ले साथ में मिलता है, इसलिए स्पेशल जाने की जरूरत नहीं रहती। अब डिस्कवरी की कथा है ऐसे भी तो वो भी काम चल जाता है। जैसे ही बोला, और वो मनुष्य की भाषा में, ऐसा नहीं कि वाघ की गरिमा में बोल रहा था, मनुष्य की भाषा में कृष्ण कृष्ण बोल दिया। यही चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चलने वाले भक्त का और महाप्रभु का अनुग्रह आशीर्वाद है कि उनके संपर्क में उनके संग में आने वाला व्यक्ति बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी योगी तपस्वी भी नहीं बोल पाते, लेकिन प्रेमी भक्त गौरांग के संपर्क, उनके भक्तों के संपर्क में आने वाला बोलने लगता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। नाचने लगा व्याज। कविराज महानुभाव कहते हैं चैतन्य चरितमृत में, पार्वती ने महाप्रभु कैला गैला नदी स्नान, चैतन्य महाप्रभु उसकी के बाजू में एक नदी थी बहती थी, उसमें स्नान करने गए, तो मत्त हस्ती युत आइला करिते जलपान, तो कुछ हथिनियों के साथ, हजारों हथिनियों के साथ हाथी एक साथ उस सरोवर में जल पीने, चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे, और क्या हुआ, एक हस्ती प्रभु आगे ला चालीला, एक हस्ती एक हाथी को क्या हो गया कि वो चैतन्य महाप्रभु के उस सुवर्ण कलेवर था ना, गौरांग महाप्रभु जल के अंदर आधे स्नान कर रहे थे उसी जंगल में, और क्या हुआ कि वो हाथियों का झुंड आया, हाथी ऐसे झुंड में चलते हैं हथनियों के साथ, और सरोवर को पानी को बहुत पसंद करते हाथी, जैसे ही आए तो एक हाथी चैतन्य महाप्रभु के आगे आया, बिल्कुल उसको लगा कि सोने का पर्वत है कि क्या है बीच में, महाप्रभु स्नान करे, तो जैसे ही आगे आया तो चैतन्य महाप्रभु ने अंजलि में जल भरकर और उस हाथी पर छिटका फैला छिकर बूंद को मारा, ए कृष्ण बोलो, ऐसे ही बोलते हुए, तो जैसे ही जल का बिंदु उस हाथी पर पड़ा तो भी दो पैर पीछे से खड़ा हो गए, दो हाथ आके ऊपर, दो वाले पैर को ऊपर करके वो भी क्या बोलने लगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो जो उनके साथ उसकी हाथनिया थी वाइफ, वो सब ने देख लिया ये पति को क्या हो गया, बिना सर्कस के कि जोगी कर रहा है, तो महाप्रभु ने देखा कि एक ही बोल रहा है, सब बैठी है चुपचाप ऐसे ही, आज सुबह भी आया था उस गजाई व करेणु भी, ये हाथी स्नान बहुत फेमस है दो तरीके से, सरोवर में प्रवेश करते हाथी लोग बहुत मस्ती के साथ और हथनियों के साथ करते हैं स्नान, और दूसरा बाहर स्नान करके जो याद करते हैं हमारे परीक्षित महाराज छठे स्कंद में, मन में कुंजर सोचे बस, फिर से वो धुआं धूल को भी अभिषेक कर ले, कोई मतलब नहीं उनके स्नान का, दो तरह से हाथी स्नान की व्याख्या है। ऐसे रासलीला में भी याद किया गया है कि भगवान ऐसे रास करते थे कि जैसे हथनियों के साथ हाथी उस वृंदावन में, और जहां गजेंद्र की कथा है वहां तो स्पष्ट वर्णन है, पुष्करेणा शिखरम की भी वो हाथी अपने सूंड में जल भरकर फ्लावर शावर कर रहा था, और जैसे छोटी छोटी बूंदे शिखर कहते हैं उसको, कि शरीर को गिरती अच्छा लगता है। और मनुष्यों को भी याद है, ये शावर स्नान अभी है ना, सब बाथरूम में हो गया है, लेकिन शावर है, लेकिन मिरर वालों को पानी नहीं है, शावर तो है, मूल सोर्स नहीं है, है तो स्लो है, सब जल्दी में काम नहीं आता। एक आनंद है, अति स्पर्श इंद्रियों का प्रतीक माना जाता है, तो नेचुरल है स्नान करना। महाप्रभु ने, महाप्रभु को क्या स्नान कर रहे थे, बोले एक कोई भगत बनाने से काम नहीं चलेगा। और जैसे जिस जिस को ऊपर, कविराज महानुभाव कहते हैं कि जार शरीरे जल चढ़ा फिर बिंदु लागिल, जिस जिसको वो छू जाता था एक एक स्पर्श वो जल का, और वही सब नाच नाच के हरि बोल करते। हाथियों को भी संकीर्तन करा दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, और चैतन्य महाप्रभु जैसे बाहर निकले, वो व्याघ्र तो नाच ही रहा है, तो दूसरे जो भाग थे उनके चाचा भतीजा कोई होंगे, उनके रिश्तेदार जो भी बाहर आए, बोले इसको क्या हो गया, ये भी नाच रहा है। जैसे भाग भाई क्या हो गया, पागल हो गया, हाथी जैसे ही वो दूसरा भाग स्पर्श किया तो वो भी नाचने लगा। पांच छह सात नाग रस्ते पर नाच रहे, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नाच रहे, वीरभद्र भट्टाचार्य को 108 वो हिल रहे कि क्या हो रहा है, पता नहीं ये संकीर्तन लीला कब समाप्त होगी या उसके पहले मैं ही समाप्त हो जाऊंगा, पता नहीं। उसी समय देखा कि ये व्याघ्र लोग नाच रहे मूड में है, पांच सात मुर्गी आई लग, कुछ हिरन जो बाघ को गंध सुनकर भी भाग जाते हैं, लेकिन वो सामने से साथ में आए वहां पर, तो व्याघ्र को नाचते देखकर वो भी बीच में आकर नाचने लगे। व्याघ्र का स्पर्श पाकर महाप्रभु गौरांग के चरणों की रज को छूकर हिरण भी नाचने लगे। हे नकाले महाप्रभु वृंदावन स्मृति हैल, चैतन्य महाप्रभु को उसी जगह उसी झारखंड में उसी समय तत्क्षणात वृंदावन की याद आ गई। तार गुण प्रकाश महिमा श्लोक तार पड़ी ल, और उसी समय वो श्लोक बोलने लगे। क्या श्लोक बोलने लगे, वृंदावन की महिमा का श्लोक बोलने लगे। कौन सा श्लोक बोलने लगे, यत्र नहि सर्ग दुर्वैरा सहासन मिगादय, श्री धाम वृंदावन में चाहे मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो, दुर्वैरा किसी को आपस में वैर नहीं है, सब एक दूसरे के प्रेमी है। ये वृंदावन की महिमा है कि जहां सब एक दूसरे के प्रेमी है भक्त है। ये श्लोक महाप्रभु गौरांग याद करने लगे, और ये श्लोक याद करते हुए उन्होंने प्रत्येक सामने देखा, क्या देखा, कविराज महानुभाव के सुंदर शब्द दिए गए हैं बंगला भाषा में, व्याघ्र मुगी अन्य अन्य करे आलिंगना, वो व्याघ्र और मुर्गी एक बाजू हिरण वो एक दूसरे को एम्ब्रेस आलिंगन कर रहे हैं, मुखे मुख दिया करे अन्यो अन्य चुंबन, एक दूसरे को किसिंग किस कर रहा है, ऐसे तो संभव नहीं है ये, लेकिन भक्ति प्रेम का जहां वातावरण हो, जहां वैर न हो, वहां ये संभव है। चैतन्य महाप्रभु के महामंत्र का प्रेम का ये प्रभाव है कि मृग और हिरण और व्याघ्र टाइगर एक दूसरे को किस कर रहा है, एक दूसरे को चुंबन कर रहा है, एक दूसरे का आलिंगन कर रहा है, और चैतन्य महाप्रभु के साथ भावावेश में नाचे। देखिए वृंदावन में भी ये है, झारखंड में भी है, और देखिए रामायण में भी भगवान श्री राम इसी तरह का वातावरण हुआ। जहां कृष्ण हो, जहां जगन्नाथ हो, जहां चैतन्य, जहां राय एक ही है भगवान है सब, वो जहां हो या उनका नाम जहां हो, उनकी कथा जहां हो, उनका नाम और कथा करने वाले वैष्णव जहां हो, वहां यही प्रेम का वातावरण निर्माण होगा। विशेष सत्व गुण विशुद्ध सत्व की वही स्थापना हो जाती है, प्रेम का वही प्रादुर्भाव हो जाता है जहां भक्त हो, जहां महामंत्र हो, जहां भगवान हो। और यही बात देखिए झारखंड में हो गई या वृंदावन में, आइए उस समुद्र के तट पर जब भगवान श्री राम दक्षिण भारत में सीता की खोज जब हनुमान जी के द्वारा हो गई और पता चला कि 100 योजन शतपार समुद्र रावण सीता को ले गया है, सारे सुग्रीव नल नल अंगद सब को लेकर भगवान समुद्र के तट पर है, और वहां पर जाते ही क्या हुआ, देखते कह प्रभु करुणा कंदा, करुणा से भरे हुए श्री रामचंद्र, उनकी आंखों से जब करुणा बरसती है, देखो ये करुणा तो कृष्ण की राम की गौरांग की आंखों से बरसती है, और उनकी आंखों में जो बस गए ना प्रेमी भक्त, उनकी आंखों से बरसती है। बाकी तो सब क्रोध बरसता है, ऐसे ही देखते हैं कि जला देते। कुछ लोग होते ना देखकर ही जला देते, बोलकर ही जला देते, मारना भी नहीं पड़ता। बच्चे दूर से ही डर जाते, ऐसा तो किसी का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी डेवलप किया है उन लोगों ने। कुछ सासों का पर्सनालिटी इतना डेवलपिंग होता है कि वो बिल्डिंग की लिप का दबा 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 दी ऊपर से बहुत सांस कांपने लगती है कि धरती कम कैसे हो रहा है। ऐसे जीवन को जीकर हम क्या करेंगे? कृष्ण के नाम का जप करने वाला, गौरांग की चरणों के आश्रय लेने वाला प्रेमी होता है, सहता है सब कुछ, हंसते मुख से सहता है। देना और सहना गौरांग के प्रेमी भक्तों का स्वभाव श्रृंगार होता है। देव सेवन राजी रहू, हमारा गुजराती माँ कहे थे कि जे वही देव जे कोई सामने वाला करे ने सहव अन तो राजी रहू, आने भगत कहवाई। सीधी बात है भगवान। और उस भजन में भी है ना, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहार। करुणा तो कृष्ण की आंखों से बहती है, राम की आंखों से करुणा बरस रही है। देखत कहा प्रभु करुणा कंदा, करुणा से नेत्र लिए हुए श्री राम उस समुद्र के तट पर जैसे ही विराजमान हो गए, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। छुआ नहीं ना किसी को, ऐसे हम लोग बाहर से तो भीग, अंदर से भीग रहे हैं कृष्ण कथा से, तो बाहर से भी जल भिगा देता है, लेकिन ये मोबाइल भीग गया किसी का, लेकिन अच्छा है कि वो है उसमें नया छू गया है। तो क्या हो गया, सब उस समुद्र में रहने वाले मकर, मकर मतलब क्या कहते हैं आप लोग, क्रोकोडाइल, मगर, नक्र और घड़ियाल उसी की जाति का आता है, तो सब प्रकट हो गए। बड़े बड़े मत्स्य, छोटे मत्स्य, समुद्र जलचर बहुत लोग होते हैं ना जल में रहने वाले, सब ऊपर आ गए क्योंकि तो राम आए हैं, राम जी प्यारे हैं, तो उनके दर्शन की लालसा से। अभी एक समझ में नहीं आता कि इन 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 समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों को भगवान को देखने की इतनी लालसा है, और उसको पता कैसे चल गया कि आ गए। हमारे गिरिधारी तो 4:30 के बजे जग के खड़े रहते, लेकिन बाकी लोग 12:30-12 बजे कृपा करने पधारते, और वो भी संडे टू संडे, पधारे तो पधारे नहीं तो नेक्स्ट संडे। और ये जल में रहने वाले जीव भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे कैसे आ गए, यही प्रेम होता है। जहां प्रेम हो, और ऐसे भगवान की भगवान की उपस्थिति ही वातावरण को, उसके रहने वाले जीवों को खींच लेती है, कर्षण कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। ये प्राकृत में, ये प्राकृत बुद्धि से, और हम समझ भी नहीं पाते इन लीला को, प्रश्न का प्रश्न बना रह जाता है कैसे आ गए, लेकिन आ गए। भगवान की करुणा और कृपा और कर्तुम अन्य कर्तुम वाली बात है, समझ में न आने वाली लीला, प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना जस व्याला, अलग अलग प्रकार के सांप प्रकट हुए, कोबरा और कोई सब अलग अलग, बड़े मुख वाले, काले पीले, क्योंकि पानी में सांप भी रहते हैं। शतयोजन तन परम, बड़े बड़े शरीर वाले, परम विशाला। लेकिन अब मजे की बात है कि ये सब प्रकट तो हो गए राम को देखने के लिए, राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, जल के समुद्र, जल के सारे जीव। ऐसे एक थी नहीं के खाई, लेकिन इन जीव जिसका नाम यहां लिया जा रहा है, उनमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये मगर बड़े मगर छोटे को खा जाते हैं जीव को, लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं, कोई किसी को नहीं खा रहा है। और ये छोटी मछलियां तो वहां से भाग भी जाती है, लेकिन कोई किसी से डर भी नहीं रहा। एकन के घर पेटी डराही, ना एक दूसरे का भय है, डर है, और ना एक दूसरे के प्रति वैर है, और ना एक दूसरे को खा रहे, सब क्या कर रहे, सब श्री राम को देख रहे। अब पॉजिटिव उपाय मिल रहा है इस लीला से कि अगर हम वैर दूर करना चाहते हैं आपस में, आपस में शांति प्रेम लाना चाहते हैं, तो सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत। यही प्रभुपाद जी ने अंतिम तात्पर्य लिखा कि सब कृष्ण की ओर नजर करे और सबके एक ही लक्ष्य हो कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो ये आपस का वैर भाव मिट जाएगा। नारा लगाने से नहीं होगा, हिंदी सिंधी भाई 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 करते वही लोग काट रहे हैं एक दूसरे को। प्रेम कब प्रकट होगा? हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे। समझ में आती है बात? भगवान से जब आप प्रेम करोगे, सबके लक्ष्य भगवान हो जाएंगे, तो सब भगवान के हैं। सिया राम मई सब जगह जान, यही बात है। स्थावर जंगम ना देखे चैतन्य, सबके अंदर भगवान को देखता है भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सर्वतम भागवत की महिमा यही बात बताई गई, सब भगवान। कहां वैर करेगा बताओ? इसलिए सब आपस में वैर थे, एक दूसरे को खाने वाले थे, लेकिन सब राम को देख रहे हैं इसलिए वैर नहीं है। झारखंड में सब भगवान चैतन्य के साथ उनको देख रहे, कीर्तन कर रहे, इसलिए वैर। और इसलिए हम पॉजिटिव प्रैक्टिकल उपाय भी मिलता है हम लोगों को कि हम भक्तों में कुछ इधर उधर भी है थोड़ा बहुत, सबको मिलकर साथ में कीर्तन करना चाहिए, सारे वैर दोष चले जाएंगे। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम।
इसलिए हमारे गिरधारी मंदिर में हमारे मायापुर वासी प्रभु ने और ये सब न्यू भक्तों ने बड़ा सुंदर आयोजन किया एकादशी के दिन। इसलिए 15 दिन में जो वैर भाव हुआ ना, उस दिन आ जाओ क्षमा। कीर्तन में सबको आना है, जप में सबको आना है, क्योंकि तो हरि नाम में ये एक शक्ति है, हरि नाम हरि कथा जो हमें इन दुर्गुणों से मुक्त करेगी। और ये हो गया ना बात, तो समुद्र के आप सबने आगे लीला सुनी है राम जी की, उसने पुल बनाया। किसका बनाया? पत्थर का, राम नाम लिख के। लेकिन यहां गोस्वामी लिखते हैं कि वो क्या पुल बनाए, पुल तो पहले ही बन गया। ये सब ये जो सारे जलचर थे दिखाई न भारी, पानी दिखाई नहीं दे रहा था, सब जगह मगर ब्याज कोचली सब दिखाई दे रहा था। मान लो एक बार बंदर तो कहा भी होगा राम जी को, इसके ऊपर चढ़ के पार हो जाते, क्योंकि सब लोग मंत्र मुग्ध है, रोमांच कंपासुर तरंग बाद पुल बनाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सब जगह पूरा पूरा समुद्र में सब अलग अलग मगर मछली सब दिख रहा है, पानी दिख ही नहीं रहा। क्यों? सब मगन है, स्थिर हो गए, मंत्रवत यंत्रवत मूर्तिवत बन गए। क्यों? तो सीधा वर्णन करते हैं, मगन भये हरि रूप निहारी। श्री राम के मनोहर मूर्ति रूप को देखकर आंखें ऐसी लग गई सभी जलचरों की कि सब स्थिर हो गए। नल नील ने कहा भाई हम लोग इसलिए आए हैं पुल बनाने के लिए, इस पर नहीं जाना है, नया बनाएंगे, लेकिन इस पर नहीं जाना है हमें। लेकिन हम बात इस श्लोक से मिली जुली कह रहे हैं कि मित्राणी अजितावास, सब एक दूसरे के मित्र है। क्यों? क्योंकि अजीत का वृंदावन में वास है, कृष्ण का नाम यहाँ अजीत लिखा गया है, जिसको कोई जीत नहीं सकता उसे अजीत कहते हैं। लेकिन कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की कथा करने वाले, कृष्ण का नाम जपने वाले फिर भी बस उस अजीत को भी जीत लेते हैं, ऐसी स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। ध्याने प्रयास अजीते अपी जीतो ते त्रिलोक्याम, तीनों लोगों के जीतने वाले श्री कृष्ण जिनका नाम अजीत है, लेकिन प्रेमी भक्त उस भगवान को भी जीत लेता है, अजीत को भी जीत लेता है। लेकिन यहां पर उस पर अजीत पर हम व्याख्या न करें, ज्यादा समय हो गया, इसलिए अजीत आवास कृष्ण है ना वृंदावन में, इसलिए सब में मित्रता है, वैर है ही नहीं, सब में प्रेम है। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई, कृष्ण और कृष्ण की कथा में कोई अंतर, और वो जहां है वहां भी मित्रता ही होगी, वैर होगा नहीं। लेकिन वाह कृष्ण नहीं मतलब कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण कथा नहीं, कृष्ण प्रसाद नहीं, कृष्ण प्रेमी भक्तों का संग नहीं, सानिध्य नहीं, वहां तो रजस तमस का प्रभाव कलयुगी होगा। क्योंकि जहां कृष्ण था नहीं, सूर्य होने पर अंधकार रहेगा नहीं, वैसे कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण कथा रहने पर कुछ नहीं होगा। दूत त्रित, दूत मतलब भाग कर दौड़ कर चले गए, क्या चले गए? रीट क्रोध, क्रोध की भावना, कामना, वासना, मत्सरता, ईर्ष्या, ये सारे दुर्गुण राजधानी से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगे, भागने लगे वहां से, क्योंकि रह ही नहीं सकते। इसलिए आप भक्तों से निवेदन है कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनिए। हमारे कृतज्ञ प्रभु यहाँ बैठे, बहुत बड़े और भक्त विद्वान है, सारे शास्त्र का अध्ययन किया है। एक बड़ा मधुर भजन हमको याद दिलाए इस पर, गौरांग की लीला, चैतन्य की लीला, और खास करके राधा कृष्ण एक बन के गौरांग बने, तो लोचन दास ठाकुर ने गाया है, अशुपाखी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। पशु और पक्षी भी गौरांग की लीला को सुनकर झूमने लगते हैं, अरे पत्थर भी पिघल जाते हैं। भक्त की क्या कहे, मैं मनुष्य की क्या कहे, बस आइए और सुनिए भगवान की लीलाओं को, बस जपिए मुख से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। भजो भजो भाई चैतन्य नित्यानंद, बस इस गौर चैतन्य का नित्यानंद का भजन करो, उनका भजन करने पर जो सबसे दुर्लभ अति दुर्लभ ब्रह्मार दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है वो आपको प्राप्त हो जाएगा बड़ी सरलता से। ये बड़ा सुंदर वैष्णव गीत में भजन है, वो स्मरण दिलाए उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमारा सबसे बड़ा हितेशी, हमारा भला करने वाला वह है जो हमें भगवान का भजन या श्लोक या लीला सुना दे, याद करा दे, क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण होने पर विपत्ति टिक ही नहीं सकती, और सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है भगवान का, भगवान के भक्तों का, दिव्य लीलाओं का स्मरण चिंतन। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, मित्राणी जहाँ भगवान है, भगवान नाम है, वही मित्रता होगी, और मित्रता होगी तो वैर होगा ही नहीं, और फिर अगर वैर नहीं मित्रता है तो सारे क्रोध काम प्यास भूख सब भाग जाएगी। तो ये मैं ऐसे तो बुद्धि ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ये श्लोक, चिंतन के लायक है और जीवन में उतारने लायक है कि हम सभी एक दूसरे भक्तों को आदर दे, प्रेम करे, सब में भगवान को देखे, सबको भगवान का समझते हुए सबकी सेवा भावना करे, सेवा भावना से जीवन जिए। और गिरधारी से यही मांगना है जगन्नाथ जी से कि कुछ भी छूटे लेकिन आपके प्रेमी भक्तों की सेवा और संग न छूटे, क्योंकि भक्त के साथ रहेंगे तो भजन न करना हो तो भी करना पड़ेगा, हो जाएगा, और जैसे ही भक्तों का संग छोड़ा तो भजन करने पर भी होगा नहीं, क्योंकि वो करने देंगे ही नहीं, तो संग की संगति तो कभी भजन में बाधा लाएगी ना, कभी ठीक होने नहीं देगी। और काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक रेख लागी है पे लागी है, आप काजल मतलब क्या बोलते हो, कौलसे की खान में जाओ इतना भी ध्यान रखो ढाक लगेगा ही, ऐसे कुसंग कुछ भी ध्यान कैसे भी करो आप फंसोगे ही, ठीक उल्टा अगर सत्संग साधुओं का संग थोड़ा भी हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। लंबे जीवन की हमें आशा नहीं, लेकिन सुंदर पवित्र वैष्णव जीवन की आशा। फूल बड़ा होना उसकी महिमा नहीं, छोटा हो लेकिन सुगंधित होना चाहिए, बड़ा हो लेकिन एक गुलाब बड़ा है लेकिन कोई खुशबू नहीं बेकार, क्या मतलब है? हमारा जीवन वैष्णव सद्गुणों से विभूषित होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की शरण ले और नित्य ले, नित्यम भागवत सेवे, हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।